So Hare Krishna, following is a lecture by His Grace Rukmini Krishna Prabhuji on Srimad Bhagavatam, 4th Canto, 24th Chapter, verse number 69 on 7th of June 2007. And the topic is prayers.
हे राजपुत्रो, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने कर्म करते रहो। भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति स्तोत्र का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। बात करें शिव जी द्वारा की गई स्तुति अत्यंत प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण है। अपने कर्म में लगे रहते हुए भी परमेश्वर की स्तुति करने मात्र से मनुष्य पूर्ण बन सकता है। जीवन का असली उद्देश्य तो भगवत भक्त बनना है। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अमरीकी, अंग्रेज, भारतीय, इस संसार में कहीं भी रहकर श्री भगवान की स्तुति करके भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र भी स्तुति ही है, क्योंकि स्तुति में भगवान को संबोधित किया जाता है और भगवान से विनय की जाती है कि वे अपनी भक्ति में लगाएं। हरे कृष्ण महामंत्र भी कहता है कि भगवान कृष्ण, ये भगवान राम, ये भगवान की शक्ति हरे, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भले ही कोई निम्न वर्ग का क्यों ना हो, वह हर अवस्था में भक्ति कर सकता है। जैसा कि भागवत में 1.2.6 कहा गया है, अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति को किसी भी दशा में रोका नहीं जा सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही विधि बताई है। ज्ञाने प्रसादे उत्पास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवद्य वार्तां स्थाने स्थिता शुद्धिगतां तनवाक मनोभि ये प्रायशो अजित जितो अभ्यसी ते स्त्री लोकया। भागवत 10.14.3। मनुष्य अपने स्थान में रहते हुए अथवा अपना कर्म करते हुए सिद्ध पुरुषों से भगवान के संदेश को सुन सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है और हम लोग संसार भर में श्री कृष्ण के संदेश को सुनने का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्र खोल रहे हैं, जिससे लोग भगवान के धाम वापस जा सके। ओम अज्ञान हरे कृष्ण। तो ये 69वां श्लोक है। इदम जपत भद्रम वो विशुद्धा नृपनंदना स्वधर्म अनुतिष्ठन दो भगवत अर्पित आशय। तो पिछले 68 श्लोकों में हम देख रहे हैं कि भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं और स्तुति सुना रहे हैं किनको, प्रचेतस। और वो स्तुति समाप्त हो गई है और अब वो प्रचेतस को बता रहे हैं, इदम जपत भद्रम वो विशुद्धा नृपनंदना, हे राजपुत्रो, इदम जपत भद्रम, कि जो मैंने आपको ये प्रार्थना सुनाई है इसका आप जप करो। इससे क्या होगा, भद्रम, निश्चय सब शुभ होगा। विशुद्धा नृपनंदना, इसके लिए, इस जप को करने के लिए आपको मेरी तरह वैरागी नहीं बनना है ना। आप राजा के पुत्र हैं, राजा के ही कार्य करते रहे, लेकिन विशुद्ध हृदय से करें। जो भी आप जिस वर्णाश्रम में स्थित हैं उसी वर्णाश्रम में रहिए और इस वर्णाश्रम में रहते हुए इस जप को करिए, उससे आप शुद्ध हो जाएंगे। स्वधर्म अनुतिष्ठन, तो अपने धर्म का पालन करते हुए भगवत अर्पित आशय, पूर्ण रूप से भगवान को अपने आप को अर्पण करते हुए पूरी श्रद्धा से उनका आश्रय ग्रहण करते हुए। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है भक्त बनना। ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है भगवान का दास। दास का यानी का अर्थ है भक्त, प्रेममयी सेवा करना, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भक्तिसान सेठ ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे कोई उस समय की बात कर रहे थे, कोई बड़ई या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर बनने नहीं आए हैं। आज के समय में देखेंगे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़े वकील डॉक्टर बनने नहीं आए हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो कोई मनुष्य देह में ये केवल संभव है, तो इसलिए अगर हमारे जीवन का लक्ष्य हमें क्लियर नहीं है तो हमारी गतिविधियां भी उल्टी सीधे होंगी। तो सबसे पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे भक्त बनना है। और श्रील प्रभुपाद यहां आश्वासन दे रहे हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के आधार पर कि भक्त बनने के लिए किसी भी भौतिक परिस्थिति को, किसी भी तरह की भौतिक परिस्थिति भक्त बनने में बाधा नहीं बन सकती। अहेतु की अप्रतिहता, चाहे हम कहीं पे भी हो, नारायणों पर कृत्वाना कुतश्चना विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग अर्कश्यत तुल्या तपि दर्शना, कि शिवजी भी प्रार्थना करते हैं छठे स्कंद में कि जो भगवान के भक्त हैं वो चाहे नर्क में रहे या स्वर्ग में रहे सबको तुल्य दृष्टि से देखते हैं, उनको किसी भी चीज का भय नहीं रहता। तो भगवत भक्ति करने के लिए किसी भी तरह की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं, केवल जरूरत है एक इच्छा की, तीव्र इच्छा की। तो हमारा लक्ष्य जीवन में क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और फिर बता रहे हैं कि अपने कर्म में लगे रहते हुए भी परमेश्वर की स्तुति करने मात्र से मनुष्य पूर्ण बन सकता है। कोई जिस आश्रम में हम स्थित हैं वहीं पे रहे, केवल क्या करना है, केवल स्तुति करने मात्र से मनुष्य पूर्ण बन सकता है। तो इसमें भगवान शिव जो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा अंग हुआ, वंदनम, उसकी महिमा बता रहे हैं कि केवल वंदनम, केवल प्रार्थना करने मात्र से हम अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। और प्रार्थना कोई भी कर सकता है, प्रार्थना करने के लिए हमें पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होना पड़ेगा। एक तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कनिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो शुद्ध हृदय से भगवान से प्रार्थना करेगा तो अपने जीवन को वो पूर्ण कर सकता है। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। भक्ति योग पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भक्त बनना। अब इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योगी और ज्ञानियों की तरह कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर करना है, पूर्ण रूप से। ये बात हमें समझनी चाहिए, भक्ति का अर्थ है पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर। एकाकी अमर नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। एकाकी अमर नहीं पाए बल, हम कोई योगी नहीं है कि हिमालय में जाके योग सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। एकाकी अमर, अकेले मुझ में कोई बल नहीं है कि मैं हरि नाम ले सकूं, तुम्हें कृपा करी, आप कृपा करो वैष्णव ठाकुर, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, आपके पास कोई श्रद्धा का सागर है, मुझे केवल एक बिंदु दे दीजिए, देखो कृष्ण नाम धन है और इस कृष्ण नाम का धन दे दीजिए। तो भक्ति योग पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। और कृपा की याचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, स्तुति करनी पड़ेगी। तो प्रार्थना बहुत ही सशक्त माध्यम है भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो सारे के सारे भक्ति योग का जो विज्ञान है ये केवल किताबों में ही रह जाएगा, केवल किताबों में रह जाएगा। प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान से बातचीत कर सकते हैं। कोई बोलेगा आपका स्तर क्या भगवान से बातचीत करने का, काम क्रोध लोभ से आप भरे हुए हो भगवान से बात करोगे, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना पत्र चक्षु गति ना पाक ना मना, कि भगवान तो इस भौतिक जगत से परे हैं, ना हमारी भौतिक आंखें जा सकती हैं, ना आपकी वाणी जा सकती है, तो आपकी प्रार्थना कौन सुनेगा। पहले आप उनको शुद्ध करके आओ, आप तो दोगले हो, हिपोक्राइट हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो, आपकी प्रार्थना कहां सुनी जाएगी। शास्त्र में निश्चित रूप से बताया गया है कि हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन फिर यह भी बताया गया कि केवल मन के द्वारा ही भगवान को पा सकते हैं। ये कैसा है बात हुई, पहले बोला गया कि ना तब चक्षुगच्छी ना वाक ना मना, फिर उन प्रश्नों में बताया गया कि वह मन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, कि जब हम भक्ति के माध्यम से मन को शुद्ध कर लेंगे तो उसी मन से हमें भगवान को मन के द्वारा भगवान का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। तो वैसे हमारी वाणी में शक्ति नहीं है, लेकिन इस वाणी को हम अपने प्रेम में भक्ति से भर देंगे तो वो ये जो वाणी हमारे मुख से निकलेगी इस भौतिक आवरण को भेदते हुए सीधा कृष्ण के पास पहुंचेगी और कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। ये पूर्ण रूप से हमें विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो हम प्रार्थना करें वो प्रार्थना केवल शब्द मात्र नहीं होना चाहिए, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, प्रार्थनाओं में भाव होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, नामाकार बहिर होए नाम नहीं है। कि केवल हम बाहरी बाहरी रूप से लेते रहेंगे तो नाम आकार है और नाम नहीं है। तो जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर दवाई है, फार्मूला है, तो हम देखते हैं बस कैप्सूल ऊपर से आकर्षक लगे लेकिन अंदर जो दवाई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बड़ी बड़ी श्लोक याद करके भगवान के सामने उच्चारण कर सकते हैं लेकिन जब तक उनके पीछे भाव नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान केवल जीव से क्या चाहते हैं, प्रेम और भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्त्या प्रयच्छति, केवल भक्ति। भगवान ये नहीं कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में मंत्रा और योग में कोई वैदिक स्तुतियों के साथ मुझे अर्पण करो। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, केवल वैदिक मंत्रों को वैदिक श्लोकों को याद करके हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। और वंदना की तो बहुत महिमा बताई गई है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया 64 भक्ति चरणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है वंदना। और नरसिंह पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान के विग्रह का दर्शन करता है और भगवान के विग्रह के सामने प्रार्थना करता है तो अपने सारे पापों से वह मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। क्योंकि जो हमारे सामने खड़े हैं वो केवल मूर्ति नहीं है, वो क्या है, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान है। श्री प्रभुपाद उदाहरण देते थे जो विग्रह है वो क्या है, पोस्ट बॉक्स। तो पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालेंगे तो अपने आप जीपीओ में पहुंच जाएगी, बिल्कुल ये ऑथोराइज पोस्ट बॉक्स है। तो अगर यहां पे फल फूल भी अर्पण कर रहे हैं तो भगवान को स्वीकार करते हैं। देखिए यहां बैठे बैठे भौतिक जगत में, सड़े हुए जगत में बैठे बैठे कितनी भगवान की असीम कृपा है कि हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं, अपना एक एक्सटेंशन काउंटर यहां खोल लिया कि चलो तुम्हारी तो योग्यता है नहीं कि तुम मेरे पास आ सको, मैं ही आ जाता। गंदा सा गंदा व्यक्ति भी, कलमश से भरा हुआ कोले की तरह मन वाला व्यक्ति भी सामने आता है और अगर हृदय से भगवान के सामने प्रार्थना कर लेगा तो भगवान स्वीकार कर लेगा। देखो कितनी महिमा है भगवान की। तो हम भगवान के आगे कुछ भी अर्पण करेंगे अगर प्रेम और भक्ति से अर्पण करेंगे भगवान तुरंत स्वीकार करेंगे, तुरंत। भगवान बहुत आतुर है, क्योंकि हम सब भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान की संतान है, बहुत आतुर है भगवान, हमसे ज्यादा आतुर है। खड़े रहते हैं तभी देखिए, है ना, खड़े रहेंगे हमें दर्शन देने के लिए। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री गौरलिताय जी की, जगन्नाथ सुदेव सुंदर बहाने की। तो इस ढंग से अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से सुनेंगे। बताया गया कि तीन तरह की मुख्य प्रार्थनाएं होती हैं। एक प्रार्थना होती है दैन्य बौद्धिकता प्रार्थना, जिसमें हम अपनी दीनता बताते हैं। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने भजनों में क्या कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो अमी विषय दुर्जन सदा कामरत, कुछ पाए नहीं गुण, कि मैं विषयों से भरा हूं सदा कामरत, मेरे में कोई गुण नहीं है। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, ये दैन्य बौद्धिकता प्रार्थना, अपनी दीनता दिखा रहे हैं। दूसरी होती है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आसक्ति उनके प्रति बढ़े। जैसे कि कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है कि मैं आपके प्रति इतनी आकर्षित हो जाऊं जैसे कि नदियां समुद्र की तरफ भाग के जाती हैं, इसी ढंग से मेरा आपके प्रति आकर्षण होना चाहिए। और तीसरी तरह की प्रार्थना होती है लालसामयी प्रार्थना, कि हम लालसा कर रहे हैं। सुबह सुबह हम क्या कहते हैं, मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दियोवास नयन हेरी वो युगल रूप राशि। हम जैसे भक्तों की देखिए, आचार्यों की कृपा देखिए, कितनी कृपा है आचार्यों की, कि हम जैसे भक्त भी क्या इच्छा कर रहे हैं। कि विलास को निवास देता हूं और सदा मैं क्या देखता रहूं युगल रूप राधा कृष्ण को देखता रहूं। ए निवेदन धर सखी अनुगत कर, किसी सखी के अनुगत कर दो मुझे, है ना। अपना पहले हम स्तर देखें और फिर प्रार्थना देखें। फिर प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि सुबह सुबह हम ऐसी लालसामयी प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल भी लालसा नहीं है, लेकिन हमको इसको भाव विभोर होकर करें, निश्चित रूप से भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तो ये तीन तरह की ये प्रार्थना होती है। तो इस होलीनेस सत्सुरु स्वामी महाराज जी ने पूरी एक पुस्तक लिखी है वंदनम के ऊपर, बहुत सुंदर पुस्तक है, उसमें एक प्रार्थना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। तो बता रहे हैं कि प्रार्थना कुछ तो शास्त्रों में होती है, श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, पहले इस कंसरे के बारे तक इसमें प्रार्थना ही प्रार्थना है। तो एक तो ऐसा हो सकता है जब भगवान के सामने आए, अर्चविग्रह के सामने आए, तो हम याद करें ब्रह्मा जी ने कौन सी प्रार्थनाएं की है, कुंती जी ने कौन सी प्रार्थनाएं की है, और भगवान को देखकर हम उनकी प्रार्थनाओं को दोहरा सकते हैं। ये तो है शास्त्रों पर आधारित प्रार्थना है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत प्रार्थना भी हम कर सकते हैं ना? व्यक्तिगत प्रार्थना होने के लिए कोई बोले नहीं नहीं आपका स्तर नहीं है, नहीं, हर एक जीव का कृष्ण के साथ संबंध है। तो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी होंगी वो शास्त्रों पर ही आधारित होंगी, क्योंकि हमें जो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है वो शास्त्रों से और आचार्यों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी कोई मनोकल्पना नहीं होगी, वो शास्त्रों पर ही आधारित होगी। तो जब प्रार्थनाएं करते हैं तो इजोरीनाथ सत्सुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा इसमें एनालाइज किया है कि प्रार्थनाओं में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना में हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए कि भगवान के सामने आए हैं तो भगवान का गुणगान करें। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। हम देख सकते हैं कि यहाँ शिव जी ने भी जो प्रार्थना की, पहले भगवान का गुणगान किया कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप परम नियंता हैं, आप सब कारणों के कारण हैं। तो जब भी हम आए तो भगवान का गुणगान करें, है ना। जैसे कुंती महारानी जी भी कहते हैं कि कृष्णाय गोविंदाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस ढंग से कुछ प्रार्थनाएं याद कर सकते हैं और भगवान का गुणगान कर सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम फिर व्यक्तिगत प्रार्थना भी कर सकते हैं कि आप भगवान बहुत महान हैं, कितने कृपालु हैं। इस ढंग से हम भगवान का गुणगान करें। फिर उसके बाद हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए प्रार्थनाओं में। जहां तक हम प्रार्थना करते हैं केवल अपनी मांगे ही रखते हैं कि भगवान ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो संबंध स्थापित करने के लिए पहले हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए कि भगवान आप कितने महान हैं। शास्त्रों से आधारित भी और व्यक्तिगत रूप से भी भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। फिर भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए। किन किन बातों का धन्यवाद देना चाहिए? प्रत्येक श्वास के लिए दे सकते हैं। सबसे पहले ये मनुष्य देह दे दिया, सबसे बड़ा उपहार है ना, एक साधन दे दिया कि हम भक्ति कर सकते हैं। फिर भक्तों का संग दे दिया, अपनी कृपा की परिकाष्ठा, इससे ऊपर और भी कृपा नहीं हो सकती। फिर प्रमाणिक गुरु का आश्रय दे दिया, फिर हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, और फिर सामने हमारे प्रकट हो गए अर्च विग्रह के रूप में, फिर शास्त्रों के रूप में प्रकट हो गए। तो धन्यवाद ही धन्यवाद देना चाहिए भगवान का कि कितना मेरे जैसा पतित जीव भी आपके सामने खड़ा है, मेरे जैसा पतित जीव भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, कुछ प्रयास कर रहा है गुरु की सेवा करने का, कुछ प्रयास कर रहा है प्रचार करने का। तो बहुत हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। फिर क्या करना चाहिए? फिर तीसरा है हमें भगवान से निवेदन करना चाहिए। प्रार्थनाओं में निवेदन होना जरूरी है। कैसे कैसे निवेदन करने चाहिए? निवेदन करना चाहिए कि मैं आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहा, कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहा। श्री प्रभुपाद से पूछा जाता था कि प्रभुपाद प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, तो प्रभुपाद कहते थे हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि लेट मी लव यू, कि भगवान कृपा करके मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं आपसे प्रेम कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। फिर बार बार हमें निवेदन करना चाहिए कि मैं इस संसार में गिरा पड़ा हूं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा पड़ा हूं, कृपया करके आप मुझे इसे बाहर निकाल दिए। या फिर व्यक्तिगत प्रार्थनाएं कि कितना द्वेष है मेरे अंदर। मैं जब दूसरे भक्तों को देखता हूं तो मेरे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। कृपया करके मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस द्वेष को खत्म कर सकूं, मैं भक्तों का गुणगान कर सकूं, मैं भक्तों की सेवा कर सकूं। ये निवेदन करना चाहिए बार बार हृदय से। और फिर हमें अंत में क्या करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। किन किन बातों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? भगवान के आगे संकल्प तो बहुत कुछ ले जाते हैं, नहीं करते कुछ भी पूरा नहीं है। रोज सामने आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं डीठों की तरह और प्रार्थना करके चले जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर वही उत्पात करना शुरू कर देते हैं, इंद्र तृप्ति करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, फिर चले जाते हैं बाहर, फिर उत्पात करते हैं। तो माफी मांगनी चाहिए कि मैं अपने कोई भी संकल्प को पूरा नहीं कर पाता, कहता कुछ हो और करता कुछ हो, तो क्षमा करें। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा भावना आंदोलन में जुड़े हुए हर भक्त को पछताना चाहिए, पछताना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले उसने कितने गहरे गहरे पाप किए हैं। केवल पापों को छोड़ने मात्र से हम भक्त नहीं बन जाएंगे, जो हमने पाप किए हैं उसके लिए हम क्या पछताते हैं हृदय से? बिल्कुल भी नहीं। मांसाहार हमने किया, व्यभिचार किया, सट्टेबाजी की, झूठ बोले, धोखा दिया, हिंसा की, कितने पाप किए हैं, सब नियमों को हमने तोड़ा, उसके बाद हम भक्ति में आ गए हैं। तो हमें माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि भक्तों के अंदर ये बात आ जाती है, एक हरि नाम लेते ही सारे पाप तो धुल गए, अब किस बात की क्षमा मांगनी है, खत्म हो गया सर, अब हम इन बातों से ऊपर हो गए हैं, चार नियमों का पालन करें, खत्म। हमें क्षमा मांगनी चाहिए। जब
हमारे हृदय में
पछतावा नहीं होगा, है ना, पछतावे की अग्नि से हमारे पाप जल जाते हैं। बहुत पछतावा हमें करना चाहिए, रिपेंटेंस अति आवश्यक है। पछतावा होना चाहिए और आतुरता होनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने की, ये दोनों बहुत जरूरी हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो क्षमा मांगनी चाहिए। पद्म पुराण में एक प्रार्थना आती है कि भक्त ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि संसार में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो मुझसे ज्यादा पापी हो, मुझसे ज्यादा अपराधी हो। मैं इतना बड़ा पापी और इतना बड़ा अपराधी हूं कि भगवान मुझे आपके सामने आते हुए भी शर्म आ रही है, संकोच होना चाहिए कि रोज आकर भगवान के सामने मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे शक्ति दीजिए, और बाहर निकल के मैं कोई सेवा नहीं करता। तो शर्म आती है, कई बार शर्म आनी चाहिए हमें। तो इस ढंग से हमें क्षमा मांगनी है भगवान से। और फिर हमें ये जो प्रार्थना है केवल अपने लिए नहीं करनी, केवल अपने लिए नहीं करनी चाहिए हमें, इस सारे के सारे प्रार्थना सबके लिए करनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या है, एकाक की आमार नहीं पाए पर ऐसा मत सोचिए कि बाकियों के साथ जो हो रहा है होने दो, मैं सुरक्षित रहूंगा। क्योंकि अगर कोई सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगा। प्रत्येक भक्त दूसरे भक्त पर पूर्ण रूप से निर्भर है, पूर्ण रूप से निर्भर है, एक दूसरे की कृपा के ऊपर हम निर्भर हैं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रत्येक साधक भक्ति में प्रगति करे, प्रभुपाद के आंदोलन में अच्छे ढंग से जुड़े, उनकी सेना में एक सैनिक बने। प्रत्येक भक्त के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार 1969 में व्यास पूजा में श्री प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रार्थना कर सकता हूं। प्रभुपाद की विनम्रता। और एक बार क्या हुआ कि जब आंदोलन शुरू ही हुआ था तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा शहर था, सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजेलिस, उसमें श्रीला प्रभुपाद भ्रमण में गए। तो वहां पे गीरा स्वामी महाराज ने तभी कोई ज्वाइन किया था, तब वो ब्रह्मचारी के रूप में थे। तो प्रभुपाद से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद प्रभुपाद फिर चले गए। कुछ समय के बाद वहां के प्रेसिडेंट का फोन आया प्रभुपाद जी को कि यहां पे ब्राह्मण दीक्षित भक्तों की कमी है, तो हम गिरिराज जी को उनको सेवा देना चाहते हैं ब्राह्मण की, है ना। आप देखिए उस समय क्राइसिस होता था। तो प्रभुपाद तुरंत पहचान गए, बोले हाँ हाँ मैं उस लड़के को जानता हूं और मैंने उसके लिए प्रार्थना भी की थी भगवान से, इसको अपनी सेवा दो। ये होता है भक्तों का स्वभाव।
हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा होती है, हमें मालूम भी नहीं चल रहा कि कौन कौन से भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें प्रभुपाद ने देखा गिरिराज को और तभी प्रार्थना कर ली, ये भगवान को सेवा में लगाओ। और फिर अध्यक्ष का फोन आया कि इसको हम ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, भगवान बोला तुरंत तो उसको बना दो फोन पे। तो इस ढंग से हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा और शुद्धिकरण होता है। प्रार्थना करनी चाहिए हमें भगवान से कि मेरे भक्तों के साथ संबंध अच्छे नहीं है। जिस भक्त के साथ संबंध अच्छे नहीं है उसका नाम ले, हम नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं कि इस भक्त को मैं जब भी देखता हूं मुझे क्रोध आता है, इसकी मैं निंदा करता हूं, मेरे को प्रार्थना कर मैं इसका अपने दोष को पूरा कर सकूं, इससे मेरे मधुर संबंध हो। कि वो भक्त बहुत संघर्ष कर रहा है, उसका जप अच्छा नहीं हो रहा, उस भक्त में ये कमियां हैं, कृपया करके भगवान उस पर कृपा करें कि वो आपके आंदोलन में जुड़ा रहे। देखिए ना, हमारे सामने प्रहलाद महाराज जी ने क्या क्या प्रार्थनाएं की। नरसिंह भगवान को बोला कि मैं नहीं आना चाहता आपके साथ, मैं तो कहीं भी रहकर भक्ति कर लूंगा, मुझे तो इन मूर्खों की चिंता है। दूर दूर मूर्ख लोग ये संसार में खुशी ढूंढ रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि संसार में सुख नहीं है, तो मैं तो इनकी चिंता कर रहा हूं, इनका क्या होगा, है ना। वासुदेव दत्त जी ने क्या प्रार्थना की कि सारे के सारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उन सबका पाप मुझे दे दो और मैं उन पापों को सहन करके कितने कष्ट पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनका उद्धार करना। तो आज के समय में भी ऐसे वक्त हैं, ऐसे वक्त हैं, हम जानते हैं ऐसे भक्तों को जो ये प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी से कि आपके आंदोलन में जो प्रचारक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रखो और उन्होंने जो भी कुछ पाप किए होंगे उन सारे पाप मेरे को दे दो, मेरा स्वास्थ्य खराब कर दो। ऐसे भक्तों को हम जानते हैं और उस समय इस भक्त का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, वो अब ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कितना बड़ा हृदय चाहिए, आप सुनिए, कितना बड़ा हृदय चाहिए प्रार्थना करने के लिए। इज ओनलीनेस भक्ति थी स्वामी महाराज ने शरीर छोड़ने से पहले एक जो पहला अंतिम प्रवचन दिया था उसमें उन्होंने बताया कि जब वो ब्रह्मचारी थे तभी से वो ये प्रार्थना करते थे कि सब जीवों के पाप का बोझा मेरे को दे दो। जब से वो केवल ब्रह्मचारी थे तभी से ये प्रार्थना करते थे। तो ये हमारा हृदय होना चाहिए। भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न नहीं होंगे क्या? पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। तो इस तरह की हम प्रार्थना कर सकते हैं। और श्री प्रभुपाद ने भी कहा था, जब श्री प्रभुपाद शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो प्रभुपाद अपने भक्तों से कहा कि आप प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमारे गुरुदेव का अभी जो मिशन है पूरा नहीं हुआ। तो सब भक्तों ने प्रार्थना की और भगवान ने उनकी बात सुनी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक बार चौपाटी में एक भक्त हैं, डॉक्टर हैं, उनकी पोस्टिंग साउथ अरेबिया में हो गई। वो मुसलमान देश में वो जा रहे थे तो रास्ते में वो चितले चरता में तो श्रीमद भागवतम लेके जा रहे थे और वो डॉक्टर थे तो ऊपर से उन्होंने कवर चढ़ा दिया था उसको। और उन्होंने अपने सब भक्तों से प्रार्थना की क्योंकि वहां पे बहुत सख्त कस्टम ऑफिसर होते हैं, वो देखेंगे तो फाड़ देते हैं किताबों को, फेंक देते हैं, अंदर भी नहीं आने देते हैं। तो सब भक्तों से प्रार्थना की ये समय होगा जब मैं कस्टम क्लियरेंस कर रहा हूँगा तो आप सब प्रार्थना कीजिए। और सब भक्तों ने उनके लिए बैठ के प्रार्थना की। हुआ क्या कि वो देख रहे हैं लाइन में खड़े हैं कस्टम क्लियरेंस के और देख रहे हैं वही ऑफिसर जो बहुत ही कड़क है, बहुत लोगों को तंग कर रहा था, तो बहुत घबरा रहे थे, ये भी प्रार्थना कर रहे थे और बॉम्बे में भक्त उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आता गया, जैसे उनकी बारी आने से पहले ही वो जो ऑफिसर था वो शौचालय में चला गया और दूसरा कोई व्यक्ति आ गया और दूसरे कोई व्यक्ति ने आया, खोला बोला ये क्या? बोले मेडिकल की किताब है, मेडिसिन की, मैं डॉक्टर हूं। उनको क्या समझ में आ गया? देखा बोला ठीक है जाओ। तो कृष्णा जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, परम नियंता है। तो भगवान प्रार्थनाएं सुनते हैं तो हमें निश्चित रूप से इस प्रार्थना का प्रयोग करना चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में। प्रतिदिन प्रति क्षण हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। वास्तव में देखिए श्री प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को ऐसा बनाया कि हम प्रतिक्षण प्रार्थना कर ही रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक पूरा प्रोग्राम ऐसा बनाया जैसे प्रार्थना ही प्रार्थना है, प्रसाद पाने से पहले भी प्रार्थना है ना। जो कीर्तन हम करते हैं वो कीर्तन भी प्रार्थना में होना चाहिए। कीर्तन कोई नाचने के लिए नहीं है, कोई डीजे शो नहीं है, ये कोई संगीत में वो नहीं है। हमने अपने वो स्किल्स नहीं दिखाने हैं कि हम कितने फुर्तीले हैं, कितने जल्दी घूमते हैं, कितना ऊंचा कूदते हैं। ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है। सर भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कीर्तन भी प्रार्थना से करना, यानी कीर्तन उत्साह से नहीं करना चाहिए, खूब उत्साह से करना चाहिए, लेकिन चेतना होनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रार्थना उसमें होनी चाहिए, हमें सेवा दो, आनंद, अपना स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छा लगता है। शुरू समय हम इसीलिए करते हैं कि अच्छा लगता है, मृदंग करताल बंपर तो खूब उछलने का मन करता है, लेकिन हमें प्रार्थना में तरीके से कीर्तन करना चाहिए। फिर हम प्रतिदिन एक दूसरे को देखो वांछा कल्पत्रु बोलते हैं, ये भी तो प्रार्थना है, पतिता नाम पावने भी हो वैष्णव भी हो नमो नमा, तो जब एक बोल प्रणाम मंत्र कर रहे हैं तो प्रार्थना से करना चाहिए प्रणाम मंत्र, कि वैष्णव मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप तो पतितों का उद्धार कर सकते हैं, मुझ पर कृपा करो। तो हम लोग देखिए कितने जैसे कहते हैं सूखे नीरस बंजर वाले जो होते हैं ना भूमि वाले, वो हमारा हृदय एकदम कठोर, वांछा कल्पत्रु खत्म हो गई प्रार्थना, कोई भाव नहीं कोई कुछ नहीं, इतना अच्छा अवसर मिल रहा है कि उस वैष्णव से हम कृपा की याचना कर सके, इतना अच्छा एक अवसर मिल रहा है, तो क्यों ना उस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और सही चेतना के साथ हम प्रणाम करें, है ना। तुलसी महारानी की जब आरती करते हैं प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, पूरी लालसा में ही प्रार्थना है, फिर गुरु पूजा करते हैं पूरी प्रार्थना है, आहा प्रभु करो दया देखो मोरे पद छाया, है ना। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, आप तो करुणा के सिंधु हैं, अधम जनार बंधु मन जैसे पति जीवों के आप बंधु हैं, तो पूरी हर आप देखिए हर स्तुति स्तुति लिखी हुई है। तो हमें जितने भी हम ये श्लोकों का देखिए जैसे मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण प्रार्थनाओं से भरा हो, है ना, तो जो भी हम कर रहे हैं सब में प्रार्थना ही है और प्रार्थना का भाव ही होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी प्रार्थना का है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें सेवा दो, हमें सेवा दो, तो विषय बहुत ही बड़ा है। तो अब मैं कुछ ये बातें करते हैं कि प्रार्थनाएं आप करते हैं, अब जैसे हरेक भक्त आके ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते करते कई कठिनाइयां आती हैं, है ना। शुरू शुरू में प्रार्थना एक अच्छी लगती है, बाद में वही प्रार्थना करते रहते हैं तो उस तक मोनोटोनस हो जाता है, फिर उसमें हृदय नहीं आता कि भगवान भक्तों की सेवा कर सको भक्ति दो, बस कोई हृदय में भाव ही उत्पन्न नहीं होते और फिर बोलते बोलते थक जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और फिर कई बार दिन ऐसे निकल जाते हैं कि हम प्रार्थना ही नहीं करते। लेकिन याद रखिए कि प्रार्थना करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। विघ्न के सामने भी अगर हम बाहर सेवा में भी जा रहे हैं हर पल हम प्रार्थना कर सकते हैं, अति आवश्यक है। तो क्यों ये मुश्किलें आती हैं इस पर हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। एक तो होती है सबसे पहले कि प्रार्थनाओं में सूखापन आ जाता है, प्रार्थनाएं उतनी रसिक नहीं रहती, उसमें कोई रस नहीं रहता, समय के बाद उसमें सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। तो ये ड्राइनेस जो आती है सूखापन आता है ये हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण आता है। तो याद रखना चाहिए रूप गोस्वामी जी का श्लोक, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह बनाए रखना है, करते रहनी है प्रार्थना, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, और कोई विकल्प नहीं है, उत्साह और निश्चय से प्रार्थना करते रहे और धैर्य से प्रतीक्षा करते रहे, तत्य अनुकंपा सुसक्षमाणो, प्रतीक्षा करते रहे भगवान की कृपा की, जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए कि इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा हूं भगवान सुन नहीं रहे हैं। कई बार भक्तों के ऊपर बहुत संकट आते हैं, शारीरिक संकट, और कई बार लगता है कि आध्यात्मिक संकट भी आ गए हैं। कैसे आध्यात्मिक संकट आ गए हैं कि जो सेवा कर रहे होते हैं वो सेवा छीन ली जाती है कई बार, या कई बार बिना किसी गलती के लोग हमारे पर दोषारोपण कर रहे हैं, बिना किसी गलती के भक्तगण हमसे द्वेष कर रहे हैं, हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारी कोई गलती भी नहीं है, है ना। तो एक सूखापन आ जाता है, फिर क्या करूं इसके आगे, हताश हो जाता है व्यक्ति। तो नहीं होना हताश, याद रखिए हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, यहाँ पर हम अपनी आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के लिए नहीं आए हैं, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आए हैं। तो कृष्ण की ही इच्छा से यह हो रहा है, तो अगर कृष्ण चाहते हैं कि अभी मैं सेवा नहीं करूं तो नहीं करूं, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा कि भगवान मुझे सेवा दो, उत्साह बनाए रखना है बस। क्योंकि ये मत सोचिए कि बस एक ही दिन में हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन जाएंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस होना और इजी गोइंग लाइफस्टाइल होना इन दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। किसी को समझे आप कि जो हो रहा है ठीक है, आराम से मस्ती में रहो, और आध्यात्मिक उन्नति, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो अगर हमारे जीवन में कोई सूखापन आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा, तो भी उत्साह से हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये संघर्ष है, भगवान हमारे संघर्ष से प्रसन्न होंगे। हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो कैसा भी सूखापन आ रहा है, तरह तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, कठिनाइयां हमें हो सकती हैं, लेकिन उत्साहपूर्वक हम प्रार्थना करते रहे। और कई बार क्या कमी आती है कि प्रार्थना करते हुए हमें फल भी मिल जाता है। कई बार होता है कि हम जब से पहले प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छा जप हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे दिन फिर वही प्रार्थना करते हैं लेकिन जब अच्छा नहीं होता है ना। तो क्यों होता है ऐसा? होता क्या है कि हम लोग बदजीव हैं, थोड़ा सा कुछ हमारे साथ अच्छा होता है हमारा अहंकार फूल जाता है, अहंकार ही हो जाता है। हम बहुत अच्छे ढंग से जप कर रहे हैं और सामने किसी भक्त को देख रहे हैं वो सो रहा है, तो थोड़ा आता है आज तो भगवान की कृपा होगी मेरे पे, बहुत हरे कृष्ण 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 हरे, बहुत उत्साह से जप कर रहे हैं। दूसरा भक्त कोई सो रहा है, कोई बेचारा यूं हो रहा है, थका हुआ कर रहा है, कोई गलत जप कर रहा है, उच्चारण ठीक नहीं कर रहा, और आप करें अरे मैं बस कितना अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत उत्साह है, देखो मैं रात को लेट भी सोया था, सुबह जल्दी भी उठ गया, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगले दिन फिर उसी भाव से आप उत्साह से बैठते हैं, देखते हैं आप भी सो रहे हैं, आपका उच्चारण ठीक नहीं हो रहा। तो भगवान जैसे हमारा अहंकार बढ़ता है, भगवान तुरंत जैसे कहते हैं तो हवा निकाल देते हैं। तो अहंकार नहीं होना चाहिए, ये अहंकार भगवान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं होता क्या कि भगवान के सामने हम बहुत ही अश्रुधारा बहा बहा के रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर मन शुद्ध हो जाता है, हृदय शांत होता है, और फिर बाहर आकर फिर हम भक्तों से दुर्व्यवहार करेंगे, उनके प्रति अपराध कर बैठेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर अभी बहुत अहंकार है। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं ये प्रार्थना की थी कि आपने मुझे सेवा दिया सृष्टि की रचना करने के लिए, कहीं मुझ में अहंकार ना आ जाए। इसी ढंग से वासुदेव जो ब्राह्मण थे, जो कि कौड़ी थे, जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया तो बहुत सुंदर शरीर बन गया उनका। तो उन्होंने क्या कहा कि महाप्रभु इस सुंदर शरीर को देखकर अहंकार ना आ जाए मुझे। तो महाप्रभु ने क्या उपचार बताया कि आप निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और नाम की महिमा का गुणगान करो। तो अगर हम अहंकार से बचे रहे, देखते रहे कि ये हमारा रोग है, जैसे अहंकार आने वाला हो भगवान से प्रार्थना करें कि मैं अहंकार से बचूं। दूसरी जो तीसरी कमी आती है हमारे में कि हम प्रार्थना हृदय से नहीं कर पाते, कि हमें डर भी लगता है कई बार भगवान के पास जाने में। कई भगवान कहते हैं यस्याम अनुग्रहम हरिष्य तब धनुष्य देहि, कि जिसके ऊपर मैं जब विशेष कृपा कर देता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं, तो बहुत डर सा लग जाता है। ये ठीक है, जितना चल रहा है उतना ही ठीक है, इससे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर परिवार अच्छा है, सोलह माला हो रही है, और क्या चाहिए। और माला करते सेवा मांग ही लेते हैं, अब एक्स्ट्रा फंड रखने क्या आवश्यकता है, तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भगवान हमसे सब कुछ छीनेंगे तो फिर बदले में क्या देते हैं? अपने चरण कमल देते हैं, अमृत देते हैं। तो इस रास्ते में लाभ ही लाभ है, तो कोई डर नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि जो कई ऐसे भक्त जो फुल टाइम भी आ गए हैं मंदिर में, वो लोग कई बार जब अपने खोते खोते हमें डर लगता है ज्यादा प्रार्थना करने में, बस इतना ही ठीक है, कुछ और ना छीलने। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, इस रास्ते में कोई डर है ही नहीं। तो पूरे हृदय के साथ हमेशा हमें प्रार्थना करते रहने चाहिए। तो ये कुछ और बातें थी। अब हम आते हैं कि जो प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं वो है हरि नाम। हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गति रंजय प्रार। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, इस प्रार्थना को हम कितने गलत तरीके से करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से, बिल्कुल असावधानी पूर्वक। इसको भक्तिवर ठाकुर जी क्या बोलते हैं? प्रमद, ये पागलपन है, प्रमाद है, पागलपन, पागलपन भी है और असावधानी पूर्वक करना। केवल यही एक रास्ता है, एक केवल हम, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। आप योग कर नहीं सकते, तपस्या कर नहीं सकते, ज्ञानी बन नहीं सकते, केवल हरि नाम लेना है। और वो हरि नाम भी हम सही ढंग से नहीं लेंगे, वो प्रार्थना भी हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो कैसे होगा हमारा उद्धार। तो हम सब भक्तों को इसे सोचना चाहिए और बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक जप ना करने की तीन परिस्थितियां होती हैं, वो हरिनाम चिंतामणि में भक्ति में ठाकुर जी बताते हैं। एक को बोला गया है उदासीनता, हो रहा है जो होने दो होने दो, किसी ना किसी ढंग से माला खत्म करो बस, अरे निपट जाए किसी ढंग से, क्लेश है ये निपट निपटा दो बस किसी ना किसी ढंग से, है ना, मशीन की तरह बोलो सोते रोते जैसे भी हो खत्म करो। उदासीनता, कोई मतलब नहीं कृष्ण कौन है, राम कौन है, राधा रानी कौन है, जो होंगे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा जो चेतना है दूषित है भौतिक कलमश से, भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं, इसकी तरफ कोई रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो यह है उदासीनता। और दूसरा है जड़े, जड़े का अर्थ है लेजीनेस। वैसे तो बहुत उत्साहित रहते हैं हम, है ना, बहुत खुश दिखाई देते हैं, जैसे ही माला में हाथ डालते हैं स्पर्श मात्र से ही एकदम दंडवत प्रणाम शुरू हो जाते हैं, बैठे बैठे इतने विनम्र बन जाते हैं कि सर जमीन पे छूना शुरू कर देते हैं, छूने मात्र से ही, जितनी शक्ति है इसमें। बड़े से बड़ा जिसका अनिद्रा का रोग है वो रोग दूर हो जाएगा, केवल छूने मात्र से ही हम निद्रा देने की गोद में चले जाते हैं। तो इतनी ज्यादा सुस्ती, ये किस लिए? कि कोई रुचि नहीं है भगवत नाम में, कोई भी रुचि नहीं। और तीसरा है विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, कि हरि नाम ले रहे हैं और सोच कुछ क्या रहे हैं, नई नई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई प्रयास ही नहीं कर रहे कि इस अपने मन को वापिस खींच के लाए। तो इन तीनों से कैसे बचा जाए? पहले थी उदासीनता, दूसरा था जड़े यानी लेजीनेस, और तीसरी थी विक्षेपता, डिस्ट्रैक्शन। तो इन तीनों से बचने का केवल एक ही उपाय है कि अपने मन के प्रति हम संघर्ष करें, खूब संघर्ष करना चाहिए। कृष्ण इससे रुष्ट नहीं होंगे कि इसका मन भटक रहा है या इसको निद्रा आ रही है या इसकी कोई रुचि नहीं है, ये तो जानते हैं, ये तो बदजीव की प्रकृति है। लेकिन कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम कोई प्रयास ही नहीं करें इन तीन कमियों को दूर करने का, खूब प्रयास करना चाहिए। यह हम सबके साथ है, बौद्धिक जगत में रहने सड़ते हुए हर बदजीव के साथ ये है कि उसको आलस्य आता है, उसको उसका मन नहीं लगता, भटकता है इधर उधर और उदासीन रहता है। लेकिन हमें प्रयास करना है, प्रयास करना है खूब, निरंतर अभ्यास करेंगे तो उससे हम भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर सकेंगे। तो खूब प्रयास करना चाहिए, बार बार मन को पकड़ के लाएं, फिर भटकेगा फिर पकड़ के लाएं, निद्रा आ रही है आंखों में पानी डालें, भगवान से प्रार्थना करें, थोड़ा चल लें, भक्तों से प्रार्थना करें, ऐसे भक्तों को देखें जो उत्साहपूर्वक जप करें, उनके साथ बैठे, उनसे कृपा की याचना करें, उनके उत्साह को देखकर हम उत्साहित होने का प्रयास करें। तो प्रयास करते रहिए, संघर्ष करते रहे, तो भगवान हमारे संघर्ष को देखकर प्रसन्न होंगे। और ये हरिनाम की जो प्रार्थना है, हरिनाम लेने से पहले, हरिनाम लेते हुए, हरिनाम के बाद हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए। ये कोई यांत्रिक विधि नहीं है कि माला में हाथ डाला, बटन ऑन किया और कहा कि हरे कृष्ण हो गया खत्म, ये यांत्रिक विधि नहीं है, ये चेतना की बात है, हृदय की बात है। इसमें प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, अपनी चेतना को तैयार करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो हरिनाम देने से कम 3 से 5 मिनट में खूब प्रार्थनाएं करनी चाहिए, खूब प्रार्थनाएं करनी चाहिए, अपनी चेतना को केंद्रित करना चाहिए। तो कैसी कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, जमीन महावीर स्वामी महाराज बता रहे हैं कि 6 जीज बताते हैं महावीर स्वामी महाराज। और 6 जीज क्या है? गुरु, गुरुदेव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, छठ गोस्वामी उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, और गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करनी चाहिए, और गंधर्व का गिरधारी यानी कि राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। तो इन 6 जीज से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर बताया गया है कि गौरांग महाप्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने परम करुणाशील हैं, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कल्प है। तो कृष्णदास कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, चैतन्य नित्यानंद नाही एषव विचार, नाम लेते प्रेम देना वह अश्रुधार। कि हम अपने अपराधों से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे केवल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम लेने मात्र से। केवल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नाम लेने मात्र से हम सारे अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे इनके नाम लेने के बाद अगर हमारे कृष्ण महामंत्र लेंगे तो क्या होगा, ऐसा जीव प्रेम को प्राप्त करेगा और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाएगी। श्री श्री गौर निताय की। तो हम जब हरिनाम लेना शुरू करें तो नित्यानंद प्रभु गौराग महाप्रभु से हम प्रार्थना करें। अगर आपने ध्यान पूर्वक श्री प्रभुपाद की जपा टेप सुनी होगी, जैसे प्रभुपाद बहुत ही तेजी से जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, तो देखिए प्रभुपाद बोलते हैं गौ राम गौ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद तेजी से गौ राम का बोलते हैं, ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे आपको सुनाई देगा। तो बीच बीच में ये नहीं है कि हमें अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए, यानी कि माला समाप्त होने के बाद ही प्रार्थना करूंगा, अरे जब सही नहीं हो रहा वहीं रुककर नित्यानंद प्रभु गौराग महाप्रभु को याद करें, छठ गोस्वामी को याद करें, फिर उत्साह से लगे संघर्ष करते रहे। ये नहीं देखना कि अब हो गया टाइम, इसमें 12 माला तो कर ही लेनी चाहिए इतने समय में, तो किसी न किसी ढंग से कंप्लीट करें 16 माला के कोटा को। पूर्ण रूप से प्रार्थनाओं से भरा होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये विषय बहुत महान है, समय हो गया है, क्या करें 5 मिनट और दर्शन करते और उसके बाद बताया गया है कि जब जब शुरू करने से पहले क्या बोले, जो महाप्रभु की वो प्रार्थना है कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना ब्रह्मचारी हूं, ना ग्रस्त हूं, ना वानप्रस्थ हूं, ना सन्यासी हूं, मैं क्या हूं, गोपी भरते पद कमल दास दासानु दास, मैं केवल दासों का दास हूं। देखिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता, माला करने से पहले सर्व उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए कि मैं टेम्पल कमांडर हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सहाध्यक्ष हूं, मैं चेयरमैन हूं, इस सब उपाधियों से मुक्त होना है ना। तो इस मंत्र का उच्चारण करके हम अपने को याद दिलाएं कि मैं दासों का दास हूं, क्योंकि हम लोगों की स्थिति ऐसी है पूरा दिन जो हम सेवा करने का प्रयास करते हैं तरह तरह का आवरण हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हम अपनी गलत पहचान करनी शुरू कर देते हैं। तो याद दिलाना अपने आप को कि मैं दासों का दास हूं, तो इस भाव में आने का प्रयास करना है। फिर हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए हरिनाम प्रभु से कि आप तो करुणा के सागर हैं, आपकी जय जयकार हो, और फिर ये प्रार्थना करें कि हरिनाम प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि इन भौतिक आकर्षणों को मैं सह सकूं, तरह तरह के भौतिक प्रलोभन है तो मैं इनके मेरा इनके प्रति आकर्षण ना हो, कृपया करके आप मुझे इतनी शक्ति दें, कृपया करके इस मेरे झूठे अहंकार को आप पिघलाएं, इससे मेरा अहंकार किसके समान है, हीरे की तरह कठोर है, इतना ऊंचा मेरा अहंकार है, कृपया करके आप मेरे झूठे अहंकार को पिघला दें और कृपया करके आप मेरी सहायता करें कि मैं हमेशा आपको समझ सकूं, आपका स्मरण कर सकूं। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी पहले की स्थिति याद करनी चाहिए कि भक्ति में जुड़ने से पहले मैं कितना बड़ा पापी था, अब वैष्णव और गुरु की मेरे पर कितनी कृपा हो गई है कि इस कलयुग का जो एकमात्र साधन है हरि नाम, इसका मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं, तो मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है, गुरु की कृपा से मैं हरि नाम ले पा रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए गुरु को, वैष्णव को, हरिनाम प्रभु को कि आपकी कितनी असीम कृपा है कि मेरे जैसा बद जीव ये हरिनाम ले पा रहा है। इस ढंग से हमें जब शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद जब जब खत्म हो जाए तो जब खत्म होते ही तुरंत माला छोड़ नहीं देनी चाहिए, उसके बाद फिर से हमें 5 मिनट बैठना चाहिए। आपने एप्लीकेशन लिखी है, जब जो है एक एप्लीकेशन है कि आप मुझे सेवा दीजिए, उसके बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज एक्सेप्ट दिस एप्लीकेशन, है ना। अगर आप कचहरी में भी जाएंगे तो कचहरी में भी जो वकील लोग पिटीशन लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं कृपया इस पिटीशन को आप स्वीकार कीजिए, आई प्रे, ऐसे वर्ड वो यूज करते हैं लीगल लैंग्वेज में कि आई प्रे दिस पिटीशन में भी एक्सेप्टेड, यहाँ पे है कोई वकील बता सकते हैं एग्जैक्ट लैंग्वेज में, तो ऐसा वो लिखते हैं। तो इसी ढंग से हम भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर हमें गुरु परंपरा से, गुरु महाराज से, شنکو سوامی بن سے، گونتا جی سے، وندے دیوی تلسی مہارانے سے، اور پھر شری گنرگا گرداری رادھا کرشن کے چرنوں میں پرارتھنا کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح کا میں نے جپ کیا تروٹی پورن جپ تھا لیکن آپ کی کرپا سے میں کچھ کر پایا، اب آپ اس کو سویکار کیجیے اور مجھے اپنی سیوا میں لگائیے۔ تو اس ڈھنگ سے بہت ہی سنگھرش پورن طریقے سے ہمیں جپ کرنا چاہیے، جب کرتے سمے ہمیں پرارتھنا کی موڈ میں رہنا چاہیے، کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ایک ماتر پرارتھنا ہے جو بھو ساگر سے ہمیں پار لے جائے گی، یہی ایک ماتر پرارتھنا ہے اور کوئی نہیں۔ تو اس کو ہمیں پورن روپ سے دھیان پوروک کریں، ایک ایک شبد پہ دھیان دیں، بیچ بیچ میں پرارتھنا کرتے رہیں، چیک کرتے رہیں اپنے آپ کو میں پرارتھنا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، شروع کرنے سے پہلے پرارتھنا کریں، اس کو سماپت کرنے کے بعد پرارتھنا کریں۔ تو اس ڈھنگ سے جو شیو جی یہاں کہہ رہے ہیں پرچیتس کو کہ اس ادم جپت بھدرم وہ وشدھا نپنندنا، اس طرح کے ہم جب کریں گے تو بھدرم بھدرم سب شبھ شبھ ہوگا ہمارے ساتھ، ہر طرح کے بھوتک پرستھتی کا ہم سامنا کر پائیں گے۔ پرارتھناؤں میں اتنی شکتی ہے، ہمارے پہ طرح طرح کے سنکٹ آئیں گے، پدم پدم یت بپنا، کرپیا کر کے اس کا غلط دھارنا میں مت رہیے کہ بھکتی شروع کر دی اب تو سکھ ہی سکھ آئیں گے، یہ ساگر ہے یا لہریں آئیں گی آئیں گی، دکھ ہی دکھ ہیں، لیکن ہم پرارتھنا کرتے رہیں گے تو ہمیں اتنی شکتی رہے گی کہ ہم ہر طرح کی پرستھتیوں کو پار کر پائیں گے۔ اور پرارتھنا نہیں کریں گے، کئی پربھات کرتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پربھات کتنی سندر بات لکھ رہے ہیں اس اپنے تاتپریہ میں کہ کیندر کس لیے کھولے ہیں پربھات جی نے، کسی کو یاد ہے کیا لکھا تھا تاتپریہ میں انتم لائن میں؟ ہاں دیکھیے کہ شری کرشن کے سندیش کو سنت اوسر پردان کرنے کے لیے وبھن کیندر کھول رہے ہیں جس سے لوگ بھگوان کے دھام واپس جا سکیں۔ یہ جو اسکون کے سینٹر ہیں یہ سادھارن کیندر نہیں ہیں، یہ اس لیے کھولے گئے ہیں کہ بد جی بھگوان کے دھام واپس جا سکے۔ تو واپس جانے کے لیے سب سے جو سشکت ہمارے پاس جو ہمارا ہتھیار ہے، جو ہمارے پاس شستر ہے ہمارے پاس، وہ ہے پرارتھنا۔ ہرے کرشن مہامنت اپنے آپ میں پرارتھنا ہے، تو اس کو پرارتھنا کے روپ میں سویکار کریں اور جب موقع ملے ہمیں پرارتھنا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پرارتھنا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ بھگوان کے بیٹا کا درشن کر کے ان کے سامنے پرارتھنا کرنی چاہیے، بہت اتساہ پوروک پرارتھنا کرنی چاہیے۔ باہر سیوا میں جا رہے ہیں تو پرارتھنا کرنا چاہیے، کوئی بھی سیوا شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے پرارتھنا کرنی چاہیے، سیوا سماپت ہو جائے اس کے بعد پرارتھنا کرنی چاہیے کہ بھگوان اس کو آپ سویکار کر رہے ہیں کہ میں نے پریاس کیا آپ کی پرسنتا کے لیے، انہیں ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا اہنکار بڑھے گا۔ تو ہر پل ہمارا پرارتھنا سے بھرا ہونا چاہیے۔ تو نشچت روپ سے پربھوپاد جی کا یہ لکش ہے کیندر کھولنے کا، اس لکش کو ہم پراپت کر رہے ہیں۔ ہرے کرشن۔ کسی کوئی پرشن ہے، ٹپڑی ہے؟ ہاں جی پرشن، پہلا تو آپ کی ٹپڑی تھی، بہت اچھی ٹپڑی تھی کہ جس ماتا کا پتر بنے گا وہی وہ پتروتی نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا آپ کا کمنٹ ہے۔ ہاں تلسی داس جی کا دھنیہ واد۔ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ پرچیتاؤں نے ایسا کیا کیا کہ بھگوان شیو جی نے ان کو درشن دیا اور اتنا سندر سندیش دیا، وقت تو بہت ہوئے۔ تو یہ شیو جی کی اہیتو کی کرپا ہے نا۔ اور دوسرا پرچیتا لوگ اس کے یوگی اس لیے بنے کہ انہوں نے ترنت آگیا کا پالن کیا، پراچین بڑی درش نے جو ان کو بولا کہ اب گرست آشرم میں جائیے تو کیا کیا، وہ تپسیا کے لیے نکلے۔ تو اس اولی نے گوپال کشن سوامی مہاراج اپنے ایک لیکچر میں بتاتے ہیں کہ جب تک ہم تپسیا نہیں کریں گے ہم پرارتھنا بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں اپنے شریر کو تپسیا کے لیے تیار کرنا ہوگا، تیار رہنا پڑے گا تپسیا کے لیے۔ تو انہوں نے یہ آترتا دکھائی تپسیا کے لیے، تو ان کی اس آترتا کو دیکھ کر شیو جی پرسن ہوئے اور انہوں نے اپنے درشن دیے اور یہ پرارتھنا ان کو سنائی، اپنا شیشیہ بنایا ہے نا۔ अगर उन्हें कोई तपस्या करने की इच्छा ही नहीं होती तो फिर थोड़ी भगवान शिव को दर्शन देते। तो इसीलिए हमें भी तैयार होना चाहिए तपस्या के लिए, घबराना नहीं चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र कम ये न सत्तम शुद्धि अस्मत सुख्यम तो अनंत, तपस्या से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी गुरु के माध्यम से, है ना। तो कई बार हम देखते हैं, ये पॉइंट मैं कवर नहीं कर सका, कि जितना मर्जी हम प्रयास कर ले हृदय आता ही नहीं प्रार्थनाओं में, हृदय नहीं आता प्रार्थनाओं में। जितना मर्जी प्रयास कर ले, आंखों से अश्रु आप बहने का प्रयास करें, हृदय नहीं आता प्रार्थनाओं में। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हम तपस्या नहीं कर रहे, तो हमें देखना पड़ेगा अपना दिनचर्या में कि आप हो सकता है जल्दी ना उठ रहे हो, सुबह मंगल आरती ना आ रहे हो, है ना, जब ठीक ना कर रहे हो, वैष्णव अपराध कर रहे हो, अधिक इंद्र तृप्ति में लगे हो, अत्याहार कर रहे हो, अधिक सो रहे हो, तो चेक करना चाहिए। तभी तपस्या नहीं करेंगे तो प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, बहुत बड़ी तपस्या सुबह उठना आपको नहीं लगता, हमें तो लगता है ना तपस्या। देखिए सबसे पहले है, सबसे जो मूल तपस्या है, चार नियमों का सख्ती से पालन। चार नियमों का हम सख्ती से पालन करें, ये तो सबसे पहले करना ही करना। अगर ये नहीं कोई कर रहा तो उसके हृदय से प्रार्थना में नहीं निकलेगी, नंबर एक। नंबर दो, जैसे माता जी ने बताया कि तपस्या तीन तरह की है, शरीर की, मन की और वाणी की। तो वाणी की तपस्या की हम तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अजल्पा करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे सबको ठेस लगती है, निंदा कर बैठते हैं, ये वाणी की तपस्या है। मधुर बोलना है, निंदा नहीं करनी है, शास्त्रों की बातें बोलनी है, वाणी की तपस्या। मन की तपस्या, मन की तपस्या है कि हमेशा संतुष्ट रहें, द्वेष ना करें, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें। और शरीर की तपस्या है कि अपने शरीर से हम वैष्णवों की, गुरु की, ब्राह्मणों की, अपने से बड़ों की सेवा करें। तो अगर ये तीन हम ये तपस्या नहीं कर रहे हैं तो हम प्रार्थनाओं में तो ना हृदय नहीं ला पाएंगे। और दूसरी बात, तपस्या करने की शक्ति भी हमें प्रार्थना से प्राप्त होती है, तो हमें दूसरे पर निर्भर है कि हम तपस्या सही ढंग से कर सकें। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, कृपा मांगनी, शक्ति मांगनी पड़ेगी, तभी हम तपस्या कर पाएंगे। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो हम कृपा पर ही निर्भर है। तपस्या से तो शक्ति मिल जाती है, हिरण्यकश्यप को भी शक्ति मिल गई थी, तमोगुणी तपस्या होती है, असुर लोग बहुत तपस्या करते हैं, है ना। लेकिन ब्रह्म सुखम तो अनंतम वो प्राप्त नहीं होगा, अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त नहीं होगा, वही तपस्या उनके दुख का कारण बनेगी। बहुत अच्छे अपने भाव व्यक्त किए हैं, हैरानी की बात है, वास्तव में बहुत बड़ा आश्चर्य है कि क्यों कोई वैष्णव अपराध करता है। मतलब कि बार बार शास्त्रों में बताया गया है कि वैष्णव अपराध करोगे तो नरक में जाओगे, है ना, ये पागल हाथी वाला अपराध है। सब कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद भी कर रहे हैं, उसे हम चर्चा कर रहे थे, ऋषभ भगवान ने बताया है नूनम प्रमता करुते विक्रमा, कि जो लोग पापी हैं वो पागल हैं, लेकिन जो वैष्णव अपराधी हैं उनके तो शब्द ही नहीं है कोई। पागल शब्द ही बहुत ही छोटा शब्द है, जो पाप करते हैं अपनी नित्यति के लिए उनको तो पागल बोल दिया, लेकिन जो वैष्णवों के समाज में रहते हुए वैष्णव अपराध कर रहे हैं उनके लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये तो आत्महत्या करने के समान है। कि नहीं करनी मुझे भक्ति, ठान ली है कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कृपा भगवान कृपा दे रहे हैं जबरदस्ती, बोले नहीं चाहिए मुझे आपकी कृपा, नहीं करनी मुझे, जाओ जबरदस्ती कराओगे, नहीं करना चाहता। तो जिसने ये ठान रखी है वही व्यक्ति वैष्णव अपराध कर सकता है, वास्तव में वो बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। क्यों कर रहे हो समझते नहीं क्या? वैसे तो अनइंटेंशनली तो कई अपराध हो जाते हैं अज्ञानतावश, लेकिन जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करना बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। जब तो प्रार्थना ही है। नाम और हाँ नाम अपराध हाँ। जैसे हमने बताया कि अभी हम अपराधों से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर हम यही संघर्ष करते रहेंगे तो इसी संघर्ष में स्थिति को नामाभास बताया गया हाँ, कि जब हम अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, खूब संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें नाम का आभास आ जाएगा। और बताया गया कि एक नामाभास की स्थिति में पहुंचना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस स्थिति में पहुंच के भी हमारे हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में कृष्ण प्रेम तो नहीं मिलेगा, ये मुक्ति निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं नामाभास से। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप अपराधों से बचने का सिंसियर प्रयास कर रहे हैं। देखिए जब करते समय दो घंटे की बात नहीं है, ये पूरी आपकी जीवन शैली है। ये जो हम अपराध युक्त नाम लेते हैं या शुद्ध नाम लेते हैं, नामाभास लेते हैं, पूरे के पूरे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यानी कि जब के समय हमने अनुभूति होगी, आपका पूरा पूरा व्यक्तित्व, आपका चरित्र बदल जाता है। नामाभास का अर्थ है कि जैसे एक कमरा है जैसे पूर्ण रूप से अंधेरा है और थोड़ा सा एक छिद्र से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बस वो ये नामाभास हो गया, प्रकाश का आभास हो गया। और शुद्ध नाम हो गया, आपने दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दी और पूरा का पूरा प्रकाश आ गया। और अपराध युक्त नाम हो गया पूरा अंधकार। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे रजोगुण तमोगुण में लग्न है और फिर शुद्ध हृदय कैसे होगा। प्रार्थना शुद्ध होनी चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं रजोगुण तमोगुण में हूँ, भौतिक इच्छाएं बहुत है, लेकिन भगवान शक्ति दो इन भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर सकूं। ये शुद्धता भाव, कपटता नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने क्या प्रार्थना की नरसिंहदेव भगवान से, कि मैं आपसे यही चाहता हूं कि हृदय के अंतकरण से मेरी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाए। तो एक्सेप्ट करना, भगवान किसी के साथ आके हमें संबंध स्थापित करना चाहिए कि देखो भगवान ये व्यक्तिगत प्रार्थना है, प्रभुपाद जी के साथ सामने जाके प्रभुपाद मेरे हृदय में ये चल रहा है, काम वासनाएं बढ़ रही है, मैं प्रयास कर रहा हूं, शक्ति दीजिए मैं इसको पूरा कर सकूं, इसके ऊपर जा सकूं, मन में द्वेष आ रहा है जो जानता हूं गलत है, शक्ति दीजिए मैं द्वेष से ऊपर हो सकूं, है ना। ये प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम कपटता से आए, ओ ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं बस ये करके हम चले जाए बस, तो ये कपटता हो गई। हम अपना हृदय भक्तों के सामने भी नहीं खोल रहे और भगवान के सामने भी नहीं खोल रहे, तो इस ढंग से करेंगे भगवान के भक्त। प्रभु जी कह रहे हैं कि हमने बोला था कि ना भगवान के धाम में ना ये नेत्र जा सकते हैं, ना वाणी ना मन, तो प्रार्थना तो हम आत्मा कर रही है, तो ये तो स्पिरिचुअल है, तो इसको स्पिरिचुअल बनाना पड़ेगा, है ना। बोलेंगे तो अब इसी वाणी से ना, और मन को ही प्रयोग करेंगे, है ना, इसको स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, भक्ति डालनी पड़ेगी तभी वो ये साधन काम करेगा हाँ। भक्ति नहीं डालेंगे तो ये दूषित साधनों से प्रार्थना नहीं, भक्ति डालते दूषित करना, ठीक है। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सही ढंग से प्रार्थना कर सकें और भगवान की असीम कृपा को प्राप्त कर सके। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद लोग अपनी कृपा बांट रहे हैं, कृपा की बाढ़ आई हुई है, तो हम केवल यही प्रार्थना करें कि हम उनकी बाढ़ में हम भी डूब जाए। बहुत ही सरल है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं केंद्र इसीलिए खोलें कि हम भगवत धाम वापिस जा सके, तो बहुत ही सरल है। और बोल रहे हैं कि संस्तुति करना ही सबसे सशक्त तरीका है भगवत धाम जाने का। तो इस प्रार्थना के महत्व को समझे, प्रार्थना सही चेतना में हम कर सकें, ये सब हम प्रार्थना करते हैं। श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथ श्रीमद भागवतम की।